आज है 6 जनवरी दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। अमरीकी खुफिया विभाग के प्रमुख ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के बारे में अगले हफ्ते देंगे जानकारी। नेपाल में भूकंप के 20 महीने बाद भी राहत और पुनर्वास का काम आधा अधूरा। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में मूल निवासी और बांग्ला समाज आमने सामने।
आदिवासियों का यहाँ पर जनसंख्या में कमी हो रही है, ऐसा क्यों? लाखों की कमी बताया जा रहा है। हमको जो मिला है वो क्यों वापिस हो रहा है? हमारा जो हक है उसको तो छीना जा रहा है।
और नोटबंदी का धार्मिक स्थलों पर क्या पड़ा है असर?
जिंदगी के रोजमर्रा के खाना खर्चा या जो भी बाल बच्चों के लिखाई पढ़ाई में या कपड़े लत्ते में, इसमें तो वाकई बहुत बड़ा असर पड़ा।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमरीकी खुफिया विभाग के प्रमुख जनरल जेम्स क्लैपर ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल की वजह वो बताएंगे। चुनाव के दौरान रूसी हस्तक्षेप की सुनवाई कर रही सीनेट की सैन्य सेवा समिति के सामने गवाही के दौरान जेम्स क्लैपर ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के ईमेल्स लीक करने का आदेश दिया था और इसके पीछे के मकसद का खुलासा अगले हफ्ते किया जाएगा। हालांकि जेम्स क्लैपर रूसी हैकिंग को युद्ध की कार्रवाई बताने से बचते रहे। इस मामले की सुनवाई कर रही सीनेट की सैन्य समिति के अगुवाई रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैकेन कर रहे हैं। जेम्स क्लैपर ने कहा कि रूसी अभियान में प्रोपेगेंडा, गलत सूचना और झूठी खबरें देना शामिल था। जेम्स क्लैपर ने ये कहा, वो हमारे टाट में छेद पाएंगे तो वो उसका फायदा जरूर उठाएंगे, चाहे वो रशिया टुडे के जरिए खबर देना हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या फिर गलत खबरें फैलाना हो। उन्होंने हैकिंग के अलावा इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये थे जेम्स क्लैपर के शब्द। रूस अमरीकी चुनाव में दखल के आरोप से इनकार करता है, लेकिन इस आरोप के बाद नाराज हुए अमरीका ने 35 रूसी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से रिश्वत लेने के एक मामले में पुलिस ने दूसरी बार पूछताछ की है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक उन्होंने इसराइल, हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत की कई हाई प्रोफाइल हस्तियों से गैरकानूनी तरीके से तोहफे लिए हैं। हालांकि बेन्यामिन नेतन्याहू ने रिश्वतखोरी के आरोप से इनकार किया है। पुलिस ने यरूशलम में उनके आधिकारिक आवास पर उनसे 5 घंटों तक पूछताछ की है। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा पर पहले भी सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप लग चुके हैं। अमेरिका ने चरमपंथी संगठन अलकायदा के पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा को चरमपंथ रोधी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। हमजा ओसामा बिन लादेन के सबसे छोटे बेटे हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमजा बिन लादेन ने अलकायदा में काफ़ी वो लोकप्रिय हैं और ओसामा बिन लादेन के बताए हुए जिहादी रास्ते पर चलने की प्रतिबद्धता एक ऑडियो टेप में जाहिर कर चुके हैं। हमजा ने अलकायदा की तरफ से एक ऑडियो टेप जारी कर पश्चिमी देशों को निशाना बनाकर हमला करने की अपील की थी। अब उस पर अमरीकी नागरिकों के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने पर पाबंदी होगी और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टाफन डी मिस्टूरा ने रूस और तुर्की से सीरिया में युद्ध खत्म करने के लिए एक शांति समझौता करने की अपील की है। रूस और तुर्की की मदद से सीरिया में युद्ध विराम लागू किया जा सका है। स्टाफन डी मिस्टूरा को उम्मीद है कि इस युद्ध विराम से सरकार और विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता के लिए रास्ता आसान हो जाएगा।
The two guarantors are the Russian Federation and Turkey.
रूस और टर्की गारंटर हैं और हम मानते हैं कि ऐसे किसी भी कदम का समर्थन किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये सफल होगा। हम तुर्की, रूस और संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त अध्यक्षता से मांगी जाने वाली सांख्यिक जानकारी देते रहेंगे जब तक कि वो खुद अपना निगरानी तंत्र स्थापित नहीं कर लेते। ये थे स्टाफन डी मिस्टूरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के शिकागो शहर में अभियोजकों ने 4 काले लोगों पर नफरत फैलाने वाले अपराध का आरोप लगाया है। इन पर एक व्यक्ति को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर डालने का आरोप है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। जैसा कि आपने मुख्य समाचारों में हरिता कांडपाल से सुना, अमरीकी खुफिया विभाग के प्रमुख जनरल जेम्स क्लैपर ने कहा है कि रूस ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में क्यों दखल दिया, वो इस बारे में अगले हफ्ते जानकारी देंगे। अमरीकी चुनाव के दौरान हुए हस्तक्षेप को लेकर राष्ट्रपति बराक ओबामा को गुरुवार को रिपोर्ट सौंपी गई। जेम्स क्लैपर ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के ईमेल्स लीक करने का आदेश दिया था। हालांकि जेम्स क्लैपर रूसी हैकिंग को युद्ध की कार्रवाई बताने से बचते रहे। मैंने इस बारे में ब्रजेश उपाध्याय से बात की और पूछा कि खुफिया विभाग के प्रमुख ने रूसी हस्तक्षेप को लेकर क्या कोई सबूत पेश किए हैं।
देखिए, उन्होंने ये बयान कांग्रेस के सामने एक सार्वजनिक सवाल जवाब के दौरान दिए हैं और आज उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की है और कल डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और सोमवार को रिपोर्ट के अंश सार्वजनिक किए जाएंगे, तो शायद उसमें कुछ सबूत सामने आए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि रूस ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया में क्यों दखलअंदाजी की, इसकी वजह वो जरूर बताएंगे। तो ये पहली बार एक तरह से इतने स्पष्ट तौर से जो अमरीकी खुफिया एजेंसियों के प्रमुख हैं, यानी कि यहाँ जो 16 खुफिया एजेंसियां हैं उन सब के प्रमुख हैं डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने ये बात कही है। कांग्रेस में अपने बयान में उन्होंने न सिर्फ रूस को डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकारियों के ईमेल्स हैक करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि इसे एक मल्टीफेसेटेड कैंपेन या बहुआयामी अभियान का नाम दिया, जिसमें हैकिंग के अलावा दुष्प्रचार और फेक न्यूज़ का भी इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने कहा कि वो ये तो नहीं कह सकते कि चुनाव के परिणामों पर रूस की दखलअंदाजी का असर हुआ, लेकिन रूस ने दखलअंदाजी की, इसमें खुफिया एजेंसियों को कोई शक नहीं है।
जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट्स के जरिए खुफिया एजेंसियों के बयान पर सवाल तो उठाते रहे हैं, लेकिन एक तरह से रिपोर्ट मानने से भी उन्होंने इनकार किया है। तो अगर फ्राइडे को जो शुक्रवार को जो ब्रीफिंग होगी उसमें क्या कुछ बदल सकता है?
देखिए, यहाँ यही सवाल उठ रहे हैं कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने भी कहा है कि हमारी रिपोर्ट पर सवाल उठाकर एक स्वस्थ बहस हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हमें नीचा दिखाया जा रहा है, यानी कि अपनी ही अमरीकी खुफिया एजेंसियों को जो नए राष्ट्रपति होने जा रहे हैं वो एक तरह से नीचे दिखा रहे हैं। ट्रंप अपने चुनाव अभियान के दौरान और उसके बाद भी रूस और पुतिन की सराहना करते रहे हैं और हैकिंग के इस मामले को उन्होंने अपने ऊपर हमले की तरह एक तरह से देखा है, और जैसे कि उनकी जीत पर सवालिया निशान लगा रहा हो या कोई उनकी जीत पर सवाल लगा रहा हो। और नौबत ये आ गई है कि जूलियन असांज, जो विकीलीक्स के संस्थापक हैं और जिनकी वेबसाइट पर लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी और हिलरी के टीम के ईमेल्स छपते रहे, उनकी बात पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमरीकी एजेंसियों से ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं उन ट्वीट्स में। इसी जूलियन असांज को ट्रंप 2013 के ट्वीट्स में काफ़ी खरी खोटी सुना रहे थे, जब विकीलीक्स पर बहुत सारे दस्तावेज, अमरीकी गुप्त दस्तावेज जारी हो गए थे। तो यहाँ आज यही सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप और अमरीकी खुफिया एजेंसियों के बीच अब किस तरह का रिश्ता रहेगा। कांग्रेस में भी उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के कई सेनेटर अचंभे में है कि ट्रंप रूस का क्यों इतना पक्ष ले रहे हैं, और ऐसे में जब कल आपने बताया कि उनकी ब्रीफिंग होगी तो कोई हैरत की बात नहीं है कि वो इस रिपोर्ट को भी नकार दें, लेकिन सोमवार को जब ये सार्वजनिक होगी और जनता के सामने सारी बातें आती हैं तो देखने वाली बात होगी कि वो क्या रुख अपनाते हैं।
ये थे वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय। बीबीसी की एक खास छानबीन से पता चला है कि नेपाल में विनाशकारी भूकंप के 20 महीने बाद भी राहत और पुनर्वास का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। गैर सरकारी संगठनों ने पीड़ितों के लिए 22,000 घर बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 900 घर ही बन पाए हैं। बीबीसी की इस पड़ताल और इससे जुड़े अन्य पहलुओं के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने काठमांडू में बीबीसी संवाददाता फणिंदर दहल से बात की।
करीब 2 दर्जन यानी कि 24 एनजीओ एंड आईएनजीओ ने भूकंप प्रभावित विभिन्न जिले में भूकंप पीड़ित के लिए 24,000 घर बनाने का वादा किया था, मगर हमने उन 24 एनजीओ से तथ्यांक संकलन किया है कि उनका अब तक का प्रोग्रेस क्या है। इसमें दिखता है कि वो अब तक 900 से भी कम घर बनाने के लिए सफल हुए हैं और करीब 3,000 घर का निर्माण चालू है। उन्होंने वादा किया था कि वो 26 बिलियन नेपाली रुपीज खर्च करके भूकंप पीड़ितों के लिए घर बना देंगे, मगर ये डेटा से दिखता है कि उनका प्रोग्रेस काफी स्लो है, पुनर्निर्माण की गति बहुत सुस्त है।
ये बताइए फणिंद्र की इसकी वजह क्या पता चली, क्यों ऐसा हुआ कि अभी तक जो 22,000 घर बनने थे वो सिर्फ 900 घर ही बन पाए हैं भूकंप पीड़ितों के लिए, इसकी वजह क्या रही?
वो कह रहे हैं कि उनका काम ने स्पीड अप कर नहीं पाया क्योंकि सरकार की पुनर्निर्माण की पॉलिसी बहुत देर में आई, इसलिए पीड़ित को घर बनाने के लिए समय लगा। जिनको घर बनाने की वादा कर दिए हैं उन सबको भी पैसा नहीं दिया है।
20 महीने का वक्त हो गया है भूकंप के बाद, अभी तक भूकंप पीड़ितों का उनका ठीक से पुनर्वास नहीं हो पाया है। तो ये तो एनजीओ की बात हुई, गैर सरकारी संगठनों की बात हुई, सरकार के स्तर पर पुनर्वास का काम कुछ हुआ है या वो भी सुस्त गति से चल रहा है?
वो भी काफी सुस्त गति से चल रहा है क्योंकि भूकंप में लगभग 7 लाख घर पूर्ण रूप से क्षति हुए थे और सरकार ने काफी लगभग 1 साल 1.5 साल बाद ही भूकंप पीड़ित को अनुदान देने का काम शुरू किया है। सरकारी तथ्यांक में ये दिखता है कि अब तक करीब करीब 44,000 घर बन चुके हैं और 17,000 घर का निर्माण अभी भी चालू है, बाकी में कुछ प्रगति नहीं है। और यहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक अथॉरिटी बनाया गया है वो भी स्पीड अप कर नहीं पा रहा है। ऑफिशियल्स जो है नेशनल रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी के, वो कहते हैं कि आप उनके काम में राजनीतिक हस्तक्षेप है। कैबिनेट का मीटिंग हुआ था, उसने रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी का चीफ को हटाने के निर्णय किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी कार्य क्षमता से वो संतुष्ट नहीं है, मगर ये भी राजनीतिक दिखता है क्योंकि वो अपने जो यहाँ के रूलिंग कोलिशन है माओइस्ट और नेपाली कांग्रेस पार्टी का, वो अपने आदमी उस मेकानिज्म में लाना चाहते हैं रिकंस्ट्रक्शन सारे ये काम देखभाल करने के लिए।
ये थे काठमांडू से बीबीसी संवाददाता फणिंदर दहल।
बीबीसी इंडिया बोल।
समाजवादी पार्टी में दो धड़े, दोनों एक दूसरे को पार्टी से निकालने पर तुले। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा? यही है इस हफ्ते बीबीसी इंडिया बोल का विषय। क्या हैं इस विषय पर आपके विचार? शनिवार 7 जनवरी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डायल करें इन टोल फ्री नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने 2 जनवरी को एक सर्कुलर जारी करके सरकारी अधिकारियों के राजकीय कामों में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। उन्होंने इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला दिया था, लेकिन उपराज्यपाल किरण बेदी ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। इस मामले में हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से बात की और सबसे पहले यही जानना चाहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस स्थिति में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन जाता है।
जो सरकारी कम्युनिकेशन है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके भीतर कंप्यूटर का डेटा या कंप्यूटर की फाइल, वो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मानी जाती है। और जब उस आप कंप्यूटर रिकॉर्ड को, फाइल को किसी भी ईमेल से या व्हाट्सएप से जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो जाता है। और पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का सेक्शन 4 है जिसके अनुसार कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड देश के बाहर, भारत के बाहर नहीं भेजा जा सकता है। चूंकि सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप के, इन सबके सर्वर्स विदेशों में है, इसलिए वो पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का वायलेशन है जिसके लिए सरकारी अधिकारी को सरकारी काम करने के लिए गलत माध्यम का इस्तेमाल करने पर 5 साल की जेल तक हो सकती है।
क्या ऐसा कोई मामला आपको ध्यान आता है हाल फिलहाल में जो सामने आया है जिसमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन माना गया हो?
मैं समझता हूँ किरण बेदी ने खुद ही इस बात को माना है क्योंकि जब वो व्हाट्सएप ग्रुप में जब आपत्तिजनक वीडियो अधिकारी ने डाला था उसका सस्पेंशन हो गया, इसका मतलब कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड ही था। अगर वो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता तो आप किसी को प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए तो सस्पेंड नहीं कर सकते थे। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो फेसबुक और ट्विटर, ये दोनों चीजें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के भीतर नहीं आती हैं क्योंकि जो इसका डेटा है ये क्लासिफाइड डेटा नहीं है। लेकिन जब व्हाट्सएप में आप कम्युनिकेट करते हैं तब वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के भीतर ही आ जाती हैं। उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात महत्वपूर्ण ये है कि जो डेटा है इस डेटा का बैकअप होना चाहिए, लेकिन सर्वर्स बाहर हैं और इनका कोई प्रिंटआउट नहीं रखता है तो डेटा की कैसे आप उसको बैकअप मेंटेन करेंगे। दूसरे नंबर पे ये है कि वहाँ विदेशों में इसका मिसयूज नहीं हो, इसको कैसे आप इंश्योर करेंगे। और तीसरे नंबर पे ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स, इनके भारत में दफ्तर ही नहीं है, इनके कोई शिकायत अधिकारी भी नहीं है कि कल के दिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसे संपर्क किससे करेंगे आप इसमें।
सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से बात कर रहे थे संदीप सोनी। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत सुशीला सिंह के साथ। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। स्टूडियो आ चुकी हैं हरिता कांडपाल। हरिता,
जैसे कि अभी हम खबर बातचीत सुन रहे थे, पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने जो कल बताए ये बात कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उन्होंने जो प्रतिबंध लगाया था मुख्यमंत्री ने, उसे उन्होंने खारिज किया है। तो जनसत्ता अखबार लिखता है कि किरण बेदी अधिकारियों के बीच संवाद के लिए व्हाट्सएप को बढ़ावा देने की योजना बना रही थी, इसी बीच जो है ये आदेश आ गया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर पुडुचेरी को प्रगतिशील केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो संचार में वो पिछड़ा नहीं रह सकता, इसलिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का आदेश रद्द किया जाता है। जनसत्ता अखबार ने इसका जिक्र किया है। कार्टून एक जनसत्ता के पहले पन्ने पर मैं देख रही हूँ, वो है नरेंद्र मोदी अरुण जेटली से कह रहे हैं अब सारा दारोमदार आप ही पर है, 5 राज्यों के चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। और ये बजट 2017 का यहाँ पर जिक्र है। दरअसल बजट जो है वो समय से पहले सरकार पेश करने वाली है। नव भारत टाइम्स के पहले पन्ने पर ये मुख्य हेडलाइन है। वित्त मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं और विपक्ष ने विरोध जताया है। अरुण जेटली ने कहा है बजट संवैधानिक तौर पर ज़रूरी है, और जब 2014 में चुनाव से पहले बजट पेश हुआ था तब किसी को आपत्ति क्यों नहीं थी। इसके अलावा एक और तस्वीर जो सारे ही अखबारों के पहले पन्ने पर छाई है, वो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों में बड़ा याराना नज़र आ रहा है। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर कार्टून के रूप में ये तस्वीर छपी है, दोनों एक दूसरे मोदी के सीने पर जो आप देख सकते हैं एक दिल बना हुआ है, और नीतीश कुमार के कुर्ते पर एक तीर है जो कि एक सांकेतिक तस्वीर है दोनों के बीच के प्रेम की। कल मोदी ने कहा था कि आपकी शराबबंदी बढ़िया रही, तो नीतीश ने भी उनकी तारीफ कर दी थी, कहा कि आपकी भी आपकी जो नोटबंदी है वो भी बढ़िया रही। और शराबबंदी पर भी उन्होंने जो है कहा था कि गुजरात में शराबबंदी की तारीफ कर दी थी। कल पटना में जो है ये बातचीत हुई थी इन दोनों की, और काफ़ी चर्चा इस पर होती रही। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है कि केरल के मालापुरम ज़िले के नेदुम कायम गांव में, जो कि पहला कैशलेस आदिवासी गांव घोषित कर दिया गया है, वहां ना तो पानी है, ना बिजली है, ना शौचालय है। 27 दिसंबर को जो है घोषित किया गया था इसे पहला कैशलेस आदिवासी गाँव, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो उनका कहना है कि 103 घरों में से केवल 15 घरों में ही शौचालय हैं, और पानी की भी बड़ी समस्या है और लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और एक लड़की ने कहा कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले सरकार जो है शौचालय बनाए और पानी लाए गांव में।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिता कांडपाल। और पूर्वोत्तर राज्य असम में पहली बार शासन में आई बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर बसाने का जो वादा किया था वो अब महंगा पड़ने लगा है। राज्य के प्रमुख छात्र संगठनों के साथ लगभग सभी जातीय संगठन बीजेपी के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। सरकार में सहयोगी दल असम गण परिषद के कुछ वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए राष्ट्रपति के पास भी जा चुके हैं। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की ये रिपोर्ट।
असम में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जिन बांग्लादेशी हिंदुओं को सहरियत देने का वादा कर रही थी, अब उस मुद्दे पर बात करना सर्वानंद सोनोवाल की सरकार को भारी पड़ रहा है। जातीय संगठन जहां इसके विरोध में है, वहीं दूसरी तरफ सूबाई सरकार की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद भी इस मुद्दे पर सरकार के समर्थन में नहीं है। विरोधियों को डर है कि नागरिकता कानून में बदलाव से उन करीब 1,70,00,000 हिंदुओं के असम प्रवेश का रास्ता खुल जाएगा जो फिलहाल बांग्लादेश में रह रहे हैं। राष्ट्रपति से इसकी शिकायत कर चुके एजीपी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत कहते हैं,
चुनाव का टाइम में वो कमिटमेंट दिया था एजीपी को असम एकॉर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन चुनाव के बाद वो जो बिल पार्लियामेंट में ले आया है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016, दिस बिल इज गोइंग टू अफेक्ट द असम एकॉर्ड बैडली। जो प्रोविजन है ये प्रोविजन को अफेक्ट करेगा, इसलिए द लोकल पॉपुलेशन और लोकल पीपल ऑफ द असम माइनॉरिटी हो जाएगा।
प्रदेश में बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने हाल ही में कहा था कि हिंदू बांग्लादेशियों को बसाने से असम को फायदा होगा और इससे मुसलमानों को यहां बहुसंख्यक समुदाय बनने से रोका जा सकेगा, लेकिन फिर भी सरकार के काम से हिंदू बंगालियों की बात करने वाली संगठन के प्रमुख सहदेव दास खुश नहीं है।
ये बंगाली हिंदू को जो पार्टीशन का बात सिंस 1950 से जो लोग इधर रह रहा है, इन लोग को अभी इन लोग बांग्लादेशी बोल के डी वोटर डिटेंशन कैंप में इन लोग को भेज दे रहा है, डी वोटर बोल के इन लोग के ऊपर केस चला रहा है।
ये चर्चा है कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री सोनोवाल पर केंद्र का भारी दबाव है, जबकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में असमिया लोगों से जाति माटी भेटी अर्थात जाति जमीन और अस्तित्व की रक्षा करने का वादा किया था और उसे पार्टी की जीत की बड़ी वजह भी मानी गई थी। हाल ही में असम दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि असम की संस्कृति परंपरा और भाषा की रक्षा की जाएगी। हालांकि सरकार ने इस विधेयक में संशोधन को लेकर बीजेपी सांसद सतपाल सिंह के नेतृत्व में जो संयुक्त संसदीय समिति बनाई है वो कानून में बदलाव को लेकर अलग अलग संगठनों से बात कर रही है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर के में मूल निवासी और बांग्लादेश बनने के बाद छत्तीसगढ़ आए बंगाली समाज के लोग आरक्षण के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। कई सालों के आंदोलन के बाद बंगाली समाज की 6 जातियों को 2 महीने पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया है, लेकिन बस्तर के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोग इसके खिलाफ हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की ये रिपोर्ट।
कोई 50 साल पहले भारत सरकार ने बांग्लादेश से विस्थापित लोगों को आदिवासी बहुल बस्तर में बसाया था। आज की तारीख में इनकी आबादी 3 लाख के आसपास है, जो बस्तर के लगभग 150 गांवों में फैली हुई है। पिछले 50 सालों से आदिवासियों के साथ रहते आए बंगाली समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण को लेकर किया गया उनका आंदोलन ही अब मुश्किल का कारण बन गया है। उनके आंदोलनों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बांग्लादेश से विस्थापित होकर बस्तर में रह रही 6 जातियों को आरक्षण का लाभ देने का फैसला लिया, लेकिन बस्तर के दलित पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समुदाय के लोग इस आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कांकेर में बांग्लादेश से विस्थापित लोगों के खिलाफ रैली में जुटे आदिवासी समाज के नेता सुमेर सिंह नाग कहते हैं,
हम सरकार के विरुद्ध इसलिए आज ओबीसी एससी और आदिवासी जितने हम मिल करके एक रैली निकाल रहे हैं कि सरकार के विरुद्ध, और इस सरकार जब तक के हमारी मांग को पूरे समर्थन के साथ ये नहीं करेगा तब तक के हम उसके लड़ाई आगे जारी रखेंगे।
युवा आदिवासी नेता केवल मंडावी का आरोप है कि बस्तर के इलाकों में आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं। कांकेर जिले के परलकोट में बांग्लादेश से विस्थापित शरणार्थियों के लगभग 135 गांव हैं, जबकि आदिवासियों के 132 गांव। पिछले कुछ सालों में बस्तर में आदिवासियों की जनसंख्या वृद्धि की दर में भी भारी गिरावट आई है। केवल मंडावी कहते हैं,
आदिवासियों का यहाँ पर जनसंख्या में कमी हो रही है, ऐसा क्यों? लाखों की कमी बताया जा रहा है। हमको जो मिला है वो क्यों वापिस हो रहा है? हमारा जो हक है उसको तो छीना जा रहा है। इस क्षेत्र का जो अधिकार है, हक है, जो मिला था वो छीना जा रहा है।
लेकिन बंग समाज के नेता असीम राय का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए विस्थापितों के खिलाफ आदिवासियों को खड़ा किया जा रहा है।
हम लोग 60 साल से आदिवासी बंगाली लोग रह रहे हैं, इसमें हमारी कोई भेदभावना भी नहीं है। राजनेता लोग जो नेतृत्व करने के लिए अपने रोटी सेकने के लिए भोले वाले आदिवासी लोगों को समझा के ये आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हमारी जो मांग है वो आदिवासी लोगों से कोई संबंध नहीं है।
आदिवासी समाज और बंग समाज के इन विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बंग समाज की 6 जातियों को आरक्षण देने की घोषणा करने वाली राज्य की भाजपा सरकार आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन के बाद इस मुद्दे से कन्नी काटने में लगी है। आदिवासी नेता और राज्य के गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा कहते हैं,
वो दोनों अपने अपनी बात विषय को रखे हैं। अब ये शासन का काम है या केंद्रीय हमारे सरकार का काम है कि हम किसको कितना आरक्षण देंगे, या विषय अपने अपने जगह पर उन्होंने अपने अपने कदम उठाए हैं।
बस्तर के आदिवासी पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग अब राजधानी रायपुर में बंग समाज को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकार चाहे जितनी भी कन्नी काटने की कोशिश करे, यह मुद्दा फिलहाल ठंडा नहीं पड़ने वाला है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
नोटबंदी के बाद धर्म और धर्म से जुड़े व्यवसायों पर कितना असर हुआ है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय मंदिरों के शहर मथुरा पहुंचे। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
धर्म, मंदिर और आस्था के शहर मथुरा और वृंदावन, नोटबंदी के बाद इन धार्मिक शहरों पर क्या और कैसा असर पड़ा है? मथुरा और वृंदावन की गलियों, मंदिरों, घाटों और मस्जिद का दौरा कर हमने ये जानने की कोशिश की है।
लगभग 35% चढ़ावा कम हुआ है।
चार महीने तो वैसे ही ठीक सो रहे थे।
हम लोगों को खाने पीने के लिए भी ढंग से खर्चा नहीं मिल रहा।
तो सारा पैसा बैंक में जमा हो गया तो हमको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
शाही मस्जिद ईदगाह में कोई ऐसी फर्क वाली बात नहीं।
धीरे धीरे अब थोड़ा नॉर्मल होने लगा है।
शहर दौड़ता भागता सा ही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। जिस सड़क से आप गुजरे चहल पहल नजर आती है, लेकिन इन सब के बीच एक शिकवा भी है, नोटबंदी को लेकर हुई दिक्कतों का शिकवा।
श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर मथुरा का सबसे प्रमुख मंदिर है। मंदिर परिसर के बराबर में ही मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद है। हमारे साथ इस समय मौजूद है मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान के चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी राजीव श्रीवास्तव जी। क्या इस नोटबंदी के बाद आपके मंदिर पर कोई असर पड़ा है, आपकी आमदनी पर कोई असर पड़ा है?
नवंबर माह में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दिसंबर माह में हमारा चढ़ावा घटा है, लगभग 35% चढ़ावा कम हुआ है। चेक और ड्राफ्ट आते हैं और डाक से आते हैं हमारे यहाँ, कोई न घटे न बढ़े।
श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर के करीब मथुरा की शाही ईदगाह भी है। क्या नोटबंदी के बाद शाही ईदगाह पर भी कोई असर हुआ है? इस सवाल पर शाही ईदगाह के इमाम अब्दुल वाजिद ने बताया,
इस नोटबंदी के शाही मस्जिद ईदगाह में कोई ऐसी फर्क वाली बात नहीं। जिंदगी के रोजमर्रा के खाना खर्चा या जो भी बाल बच्चों के लिखाए पढ़ाई में या कपड़े लत्ते में, इसमें तो वाकई बहुत बड़ा असर पड़ा। वो जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास पैसे थे वो तो सरकार ने जमा करा लिया। जमा कराने के बाद अब जो हम उसे निकालने के जाते हैं, दो दो चार चार दिन का टाइम लगने के बावजूद हमको मिलता है वो 2000 का एक नोट। सरकार की जुबान का मैं खुद खास तौर से कोई एतबार नहीं करता हूँ। क्यों? सरकार तो सुबह कुछ कहेंगे तो शाम को कुछ और कहेंगे।
नोटबंदी के असर को लेकर मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर के अधिकारी श्रीधर चतुर्वेदी कहते हैं,
हमारे यहाँ 6-7 लाख रुपए की करीब हर महीने में गोलक खुलती है, जिसमें भक्त अपनी अनुसार गुप्त प्रदान दे जाता है। अब की बार करीब 7-7.5 के लाख से खुली है।
नोटबंदी के बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले चढ़ावे पर कोई असर नहीं हुआ है। मंदिर के सेवायतों में से एक अशोक गोस्वामी ने बताया,
मंदिर में भक्तों की भीड़ पर कोई असर नहीं है। गोलकों में पैसा भी ठीक डल रहा है। आम आदमी इस समय परेशान है, जो चढ़ावा है जो गोस्वामियों का होता है वो कम।
दक्षिणा पर असर उन पुरोहितों की भी पड़ा है जो पूजा पाठ कराते हैं और यजमानों की श्रद्धा पर निर्भर है। पुरोहित राधा बिहारी गोस्वामी कहते हैं,
कमी तो अब ये समझिए कि बिल्कुल नाके बराबरी है। अभी तो 4 महीने तो वैसे ही ठीक सो रहे थे, अब जैसे ही देर उठे तब भी लोग कह रहे हैं हमारा अभी नहीं, हम थोड़े दिन बात करेंगे। वो लोग इसीलिए उस मामले को हटा रहे हैं कि जब पैसा आए तब बात करें।
मथुरा की सामाजिक संस्था युगांधर के अध्यक्ष राकेश शर्मा भी नोटबंदी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं।
नोटबंदी जो की शादी के सीजन में तो उससे बहुत बड़ा असर पड़ा। अब दिक्कत तो ये आती है, जैसे हम गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, आज हम उनकी मदद नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था।
मथुरा मंदिरों का शहर है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग पेड़ा खाना और अपने साथ पेड़ा ले जाना नहीं भूलते हैं। हम पहुँच गए एक पेड़े की दुकान पर और हमारे साथ हैं इस दुकान के मालिक जी। क्या नाम है आपका?
संजय अग्रवाल।
आपकी पेड़े की बिक्री पर कोई असर पड़ा है नोटबंदी के बाद?
बहुत पड़ा है, 50 पैसे घट गई है। एक कर्मचारी है।
ये मामला सिर्फ एक दुकान का नहीं, नोटबंदी के बाद कई लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है। वहीं यमुना में नाव चलाकर गुजारा करने वाले भी परेशान हैं। एक नाविक राकेश ने बताया,
पहले बोट चलती थी 200 बोट को भी ढंग से खाना मिलता था और अब बहुत मद्दा चल रहा है। इस समय नोटबंदी से बहुत ज्यादा परेशानी हुई है।
तीर्थ और पर्यटन के जरिए होने वाली आमदनी पर निर्भर लोगों को उम्मीद है कि सरकार के दावे के मुताबिक अब हालात बदलेंगे और एक बार फिर उनके चेहरे पर रौनक लौटेगी। वात्सल्य राय, बीबीसी मथुरा।
और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार। बीबीसी समाचार। अमरीकी खुफिया विभाग के प्रमुख जनरल जेम्स क्लेपर ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल की वजह अगले हफ्ते वो बताएंगे। चुनाव के दौरान रूसी हस्तक्षेप की सुनवाई कर रही सीनेट की सैन्य समिति के सामने उन्होंने गवाही के दौरान ये बातें कहीं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से रिश्वत लेने के एक मामले में पुलिस ने दूसरी बार पूछताछ की है। वेनेजुएला के अमेजन इलाके में 6 दिन पहले हादसे का शिकार हुआ सैन्य हेलीकॉप्टर का मलबा मिला, इसमें 13 लोग सवार थे।
बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। तकनीकी सहयोगी शाकिर आलम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।